राधावा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रिकॉर्डिंग चालू है, बीच में घूमना नहीं आपको।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे।
श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज 30 दिसंबर को हमारी यात्रा समाप्त हो रही है, जब हमने 25 तारीख को शाम को आरंभ की थी। सो कुछ भी कहने के पहले हम सब लोग हाथ जोड़कर गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और भगवान को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनकी असीम कृपा से हम इस धाम में आके अनंत अलेक अलग अनेक अनेक स्थानों का, दिव्य स्थानों का दर्शन कर सके, प्रार्थना कर सके, कुछ सुन सके, कुछ समझ सके। तो सब लोग हाथ जोड़कर श्री श्री राधा गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, दामोदर जी, विनोदी लाल जी, राधा माधव गलता जी, इन सभी भगवानों का, स्थानों का धन्यवाद अदा कीजिए और प्रार्थना कीजिए। हमें, हम पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तो धाम की जो लीला है, वो धाम की जो महिमा है, वो अगाध है। हम कितना भी तैयारी करके आएंगे और कितना भी याद करके बोलेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ और निकलता है उसमें से। तो सुबह में जो कुछ सुन रहा था तैयारी करते समय, उसमें भी मुझे कुछ अद्भुत बातें जो पहले सुनी थी भूल गई थी फिर याद दिलाई गई परम पूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा। तो वो कहते हैं कि राधा मदन मोहन जी की कृपा ऐसी है कि वो हमें दुनियादारी से मुक्त करके भगवान अपने साथ जोड़ लेते हैं, ये उनकी कृपा है। राधा गोविंद देव के बारे में बताया उन्होंने कि हमारी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं मालती माता जी, एकदम प्रभुपाद जी को पहले पहले दिनों में वो मिले थे, मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदेव, गुरुदास प्रभु वगैरह वगैरह। तो मालती माता जी ने प्रभुपाद जी को बहुत ही करीब से देखा है और उनके पास में प्रभुपाद जी की स्मृतियों का खजाना है। तो 95 के जयपुर यात्रा में मालती माता जी भी थी तो वो बताती हैं कि श्रील प्रभुपाद 30 साल से उन्होंने भारत में मेहनत की कि भाई यहाँ के लोगों को भगवान की भक्ति का भेंट दे दें, उनका जीवन परिवर्तित करें, कोई यश नहीं मिला उनको। फिर उनके गुरु जी का आदेश हुआ, आदेश तो पहले ही हुआ था, दोबारा स्वप्न में आदेश हुआ तो फिर उन्होंने फिर तय किया अभी विदेश जाना है। विदेश जाने के पहले वो जयपुर में श्री श्री राधा गोविंद जी के पास आए थे और राधा गोविंद जी से कृपा मांगी थी, उन्होंने आशीर्वाद मांगा था। तो आज प्रभुपाद जी ने हमको जो भी कुछ दिया है, जो भी कुछ ग्रंथ दिए हैं, उपदेश दिया है, अपना संग दिया है, मंदिर दिए हैं, कृष्ण कॉन्शियस लाइफ दिया है, जो भी एक अनंत खजाना हमको दिया है वो हम राधा गोविंद देव की कृपा मान सकते हैं क्योंकि राधा गोविंद जी के पास में आए थे वो। तो राधा गोविंद जी बड़े कृपालु हैं और वो हमें अपनी सेवा में लगाते हैं, प्रभुपाद जी के माध्यम के द्वारा राधा गोविंद जी ने हम सबको उनकी सेवा में लगाया है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात जो है वो राधा गोपीनाथ के दर्शन की है। अभी मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने समझो कुछ ये प्रार्थना नहीं की होगी तो अभी भी आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं क्योंकि अभी भी उनके धाम में आप। तो राधा गोपीनाथ जी का ऐसा महात्म्य है, आपने तो सुना कि मधु पंडित ने उनको प्रकट किया और मधु पंडित जी की कृपा से वो वृंदावन में विराजमान हो गए। लेकिन एक सुंदर कथा कृष्ण लीला में आती है कि गोपियां जो भगवान से प्रेम करती है ना वो सर्वोच्च कोटि का प्रेम है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी गोपियों को सर आंखों पर रखते थे, वैसे सन्यासी होने के नाते वो कभी स्त्री का पहना हुआ जूता भी देखते नहीं थे, इतना कठोर सन्यासी थे वो। लेकिन जो गोपियां स्त्रियां थी उनको उनके नाम जप करते थे, उनका स्मरण करते थे क्योंकि गोपियां शरीर से स्त्री थी लेकिन आत्मा से सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ को श्रेष्ठतम कोटि के भक्त थे वो। और उन्होंने जो भी भक्ति और प्रेम भगवान से किया है वो प्रेम समझाने के लिए ही वो आए थे। एक्चुअली सर्वोच्च गोपी राधा रानी है और उनका जो प्रेम भाव है वो समझाने के लिए समझने के लिए महाप्रभु चैतन्य आए थे, इतने श्रेष्ठ गोपियां थी। तो एक प्रसंग में गोपियां और भगवान संवाद कर रहे हैं और भगवान गोपियों को क्या बोल रहे हैं कि आपने मुझे जो प्रेम दिया है वो मैं ब्रह्मा के एक जीवन काल में भी प्रयास करूंगा ना तो उसका प्रतिसाद या उसका कोई क्या कहते हैं उसको जवाब या उसका रिटर्न नहीं कर सकता हूं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, हाँ उसका ऋण नहीं चुका सकता हूं। वो आपका जो प्रेम ने आपने जिस प्रकार का प्रेम मुझ पर किया है वो मैं कुछ भी करूंगा, ब्रह्मा के पूरे जीवन काल तक भी प्रयास करूंगा तो उसका ऋण मैं चुका नहीं सकता। इसलिए आप ऐसा करो कि आप जो भी कर रहे हो ना उसी में समाधान मानो जो आपने मुझे दिया है वो दे दिया है, इसी भाव में आप संतुष्ट रहो कि आपने दे दिया है। लेकिन मुझसे कुछ उम्मीद मत करो क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके दी हुई प्रेम की तुलना में मैं आपको दोबारा दे सकूं, उसके बदले में कुछ दे सकूं, मेरी योग्यता ही नहीं है, मेरे पास वो है ही नहीं ऐसा धन जो मैं आपके प्रेम के बदले में आपको दे सकूं। अब ये कौन कह रहा है, मैं और आपने कह रहे हैं, ये साक्षात परम भगवान कह रहे हैं जो सब चीज के मालिक हैं, सब चीज उनकी तरफ से आती है। लेकिन एक चीज उनकी तरफ से नहीं आती है वो है भाव, जो मतलब एक्चुअली भाव का उगम तो वही है, राधा रानी है, लेकिन फिर भी आपको और हमको उसमें कोई स्वतंत्रता भी है बीच में कि अपना भाव आप उसमें डाल सकते हो। वो भगवान का नहीं है, वो हमारा है। बाकी सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन भाव जो है ना वो हमारा है। तो भगवान इस भाव के इतने ऋणी है कि उसका वो बदले में गोपियों को कुछ लौटा नहीं सकते हैं। तो गुरु महाराज सुबह समझा रहे थे कि वो जो गोपियों का भाव है जिसको भगवान भी ऋण नहीं चुका सकते हैं, ऐसा भाव गोपीनाथ के दर्शन से प्राप्त हो सकता है। ऋषि राधा गोपीनाथ जी जो है वो ऐसा भाव की कृपा हम पर कर सकते हैं, क्योंकि वो गोपीनाथ हैं, मुरली बजाते हैं और सब गोपियों का दिल आकर्षित कर लेते हैं। दामोदर जी के बारे में मैंने बताया था पहले एक बार, आज के सारांश में दोबारा बताऊंगा। दामोदर जी का अर्थ है दाम उदर, जिनका उदर जो है दाम यानी दोरी से बंधा हुआ है। और एक तो उनकी माँ उनको बांधती थी जब नटखट शरारते करते थे, तो उनको उखल से बांध के रखा उन्होंने। एक बार कई बार बांधा है, वो दिवाली के दिन बांधा है तो उसको हम गीत गाते हैं, लेकिन कई बार उनको दंड दिया है माता जी ने। लेकिन राधा रानी भी कभी कभी लीला में एकांत में प्रेम से भगवान को बांध कर रखती थी, जंगल में वन में भी गुस्सा आया, कभी मान हुआ, कभी कुछ नाराज हो गई, तो गोपियों को साथ लेकर वो उनको बांध के रखती थी। इसके लिए भी उनका नाम दामोदर है। तो उनकी विशेषता क्या है दामोदर की, कि जो भी आप करते हो उसको बढ़ा चढ़ा कर बाद में स्वीकार करते हो, उसको थोड़ा सा भी करेंगे तो उसको बढ़ा चढ़ा कर। तो ये इनकी असीम कृपा है दामोदर जी की। तो हमने कितने कितने दर्शन किए, राधा मदन मोहन जी किए, गोविंद जी किए, गोपीनाथ किए, राधा दामोदर, राधा विनोदी लाल और राधा माधव, इतने भगवान के हमने दर्शन किए। राधा वृंदावन चंद्र भी किए दामोदर जी के मंदिर में, और फिर कालता जी में भी हमने दर्शन किए, और वही कनक वृंदावन, राधा माधव, और याद कीजिए क्या दर्शन किया। हाँ, इस्कॉन मंदिर में गए, कृष्ण बलराम की मूर्ति है ना वहाँ पर, और कृष्ण दाऊ जी, हाँ, और क्या दर्शन किए, गंगा जी के दर्शन किए ना कल। गंगा जी अभी किधर है, हरिद्वार में रहती है वो, लेकिन आपके लिए यहाँ पर भी प्रकट है। ये सब असीम कृपा है। देखो ये ऐसे हम लोग नहीं कर सकते ना, अभी हमारा दिल करेगा अभी राधा कुंड यहाँ प्रकट होना चाहिए, तो नहीं हो सकता है, हमारे अंदर क्या शक्ति है। लेकिन गालव ऋषि ने जब इच्छा किया गंगा जी आना चाहिए, तो गंगा जी आ गई उधर। शुद्ध भक्तों का महिमा यही है, जो चाहते हैं भगवान पूरा कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक बार उंगली दिखाया था, वो भारतीय विद्या भवन से सीढ़ियों से उतरते हुए ऐसा गले में उंगली दिखाया था, उंगली नहीं डंडा उठा के ऐसा दिखाया था, यहाँ पर एक हरे कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, ऐसा ही बोल दिया था। लेकिन आज वहां पर एक विश्व में प्रख्यात, विश्व में जिसको उदाहरण मानते हैं, ऐसा राधा गोपीनाथ जी का चौपाटी का मंदिर खड़ा है, केवल छोटा सा खोपचा नहीं बना है, ऐसा मंदिर बना है जहां पर भक्तों की कान पैदा होती है, मतलब कान है भक्तों की वहां पर। तो कभी प्रभुपाद जी ने कहा था और भगवान ने उसको पूरा कर दिया। प्रभुपाद जी उसको देखने के लिए नहीं रहे भी नहीं, लेकिन संत लोग जब कुछ इच्छा करते हैं ना, भगवान उस इच्छा के अधीन होते। तो ये चमत्कार तो हम भी इतिहास में सुन रहे हैं कि गालव ऋषि ने सब कुछ बोला तो गीता जी प्रकट हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई, लेकिन ये हमारे तुम्हारे जीवन में भी हमने ये चमत्कार होते हुए देखा है। कभी जमाने में प्रभुपाद जी ने कहा था और हमारे आंखों के सामने ये मंदिर पैदा हुआ, और मेरा ये सौभाग्य है कि जब मंदिर के एक कमरा और दो कमरे ऐसे आए थे, फर्स्ट जब एक कमरा छोटा सा और एक बड़ा कमरा, दो कमरे आए, तो फर्स्ट मैं उस जगह पर जाकर फुल टाइम ज्वाइन किया था दिसंबर 1986 में, और मैं और मेरी पत्नी जस्ट विवाहित हो गए थे जस्ट एक महीने पहले, तो हम दोनों जाके मंदिर में रहे थे, और वहाँ पर मेरी पत्नी और मैं मिलकर पांच ब्रह्मचारियों के लिए भोजन बनाते थे सुबह शाम दोपहर को। हमको भोजन बनाने को आता भी नहीं था, मेरे पूरे दोनों बाजू गरम गरम चावल पड़ के कुकर से उठ के जल गए थे दोनों हाथ मेरे, और ऐसे सैकड़ों चूहे वहाँ पर रहा करते थे जो हमारे दोनों के शरीर के ऊपर रात कर विहार करते थे। सुंदर राधा कृष्ण प्रभु का रूम है ना, वो वहाँ से खुलता है ना, उसमें यहाँ से खुलता था, उसमें हम लोग आधे हिस्से में छोटे से हिस्से में रहते थे, अभी तो एक्सटेंड किया उसको। तो राधा गोपीनाथ जी का मंदिर भी एक चमत्कार है, भगवान के भक्त की इच्छा को भगवान ने दिया हुआ प्रतिसाद का एक चमत्कार है। तो हम ये आपको शुभकामना करते हैं कि यात्रा से आप जाएंगे तो बिना हृदय के परिवर्तन के मत जाना, हाँ सुखे सुखे लौट के मत जाना। आपका पैसा भी बेकार गया, आपका छुट्टी भी बेकार गया। थोड़ी बहुत मुंबई से ज़्यादा शुद्ध हवा थोड़ी ले लिया आपने, अच्छी बात है, थोड़ा मुंबई से अधिक ठंड का अनुभव किया, ठीक है। लेकिन उस लाभ के लिए हम लोग धाम में नहीं आते हैं। हम धाम में आते हैं कि भगवान के नाम में हमें पहले से अधिक रुचि उत्पन्न हो जाए। और भगवान में नाम का परिचय या रुचि नहीं भी थी तो पैदा हो जाए, इसलिए हम लोग धाम में आते हैं। भगवान की कथा के विषय में हमें आकर्षण पैदा हो जाए, अट्रैक्शन, रुचि, स्वाद पैदा हो जाए, इसलिए हम आते हैं। भगवान के भक्तों का संग करने के लिए आते हैं। आमतौर पर तो अपने रिलेटिव्स, बिजनेसमैन, नेबर, यहाँ वहाँ के जो लोग अपने अपने स्वार्थ में रहते हैं उनके साथ रहते हैं हम लोग, और रहना ही पड़ता है। बिल्डिंग में सब लोग भक्त नहीं है, क्या करेंगे। कोई अलग धर्म के भी है, मांस पकाते हैं, क्या सिगरेट पीते हैं, दारू पी के दंगा करते हैं, मारामारी करते हैं, सोसाइटी की मीटिंग में झगड़ा करते हैं, सब कुछ इन लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो 4-5-7 दिन केवल भगवान के अच्छे प्रामाणिक भक्तों के साथ रहने के लिए, उनके संग में क्या अनुभव आता है वो अनुभव लेने के लिए हम लोग आते हैं। सब लोग शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन फिर भी प्रामाणिक भक्त हैं। कोई मांस नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, सिगरेट तम्बाकू गुटखा नहीं खाते हैं, स्वार्थी नहीं है। हाँ, धक्का मुक्की करते हैं कभी कभी दर्शन में, वो भी नहीं करना चाहिए, हाँ हमने कई बार बताया आपको। लेकिन भक्त हैं भगवान के, शुद्ध जीवन जीने वाले, प्रयास करने वाले लोग हैं। इनके साथ में रहने का मौका मिलता है, इनके साथ में फिर हम यात्रा में आते हैं क्योंकि उनके साथ में हम जाकर भगवान के स्थानों का दर्शन करें। तुम जब अकेले जाते वहां पर तो ऐसे ही बंदरों का पिक्चर निकाल के आ जाते आप, लेकिन भक्तों के संग में गए इसलिए आपको पता चला गालव ऋषि कौन है, गंगा जी क्या है, स्थान का महात्म्य मालूम पड़ा, कौन सी लीला हुई वहां पर वो मालूम पड़ा। तो ये सब स्थाने हेरिभ्यो आमी प्रणयी भक्ति संगे, भगवान के प्रणयी भक्तों के संग में हम ये सब स्थानों का दर्शन करके, श्रवण करके महिमा सुनना चाहते हैं। और धाम में हम क्यों आते हैं कि धाम में हम धाम के जो अधिष्ठाता देवता हैं, जैसे यहाँ के राजा गोविंद जी हैं, इनके चरणों का आश्रय लेने के लिए हम आते हैं। घूमने फिरने के लिए तो आते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य वो नहीं है। मेन उद्देश्य यहाँ के भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए आते हैं, उनकी महिमा समझने को आते हैं, उनका ही बनने को आते हैं। अपना रबोली उनको विनती करते हैं कि अपना बना लो, मैं दुनिया का बन चुका हूँ, ढक ठोकरे खा रहा हूँ, अभी आप अपना बना लो मुझे ताकि मैं आपकी सेवा में रहूँ और दुनिया के लत्ता पहार लातों को भोग भोग के भी थक गया हूँ मैं अभी, तो आप जरा मुझे मुक्त करो उनसे, इस भाव से आते हैं। तो अभी जिन जिन का गौरव करना था सब लोग बाहर चले गए, हमारे अभिराम प्रभु, भावग्राही प्रभु, गोपीकांत प्रभु, सत्यनारायण प्रभु, संजय प्रभु और महेश कुचरेकर, इन सब लोगों ने मिलकर आपका यात्रा अधिक से अधिक सुविधापूर्ण करने का प्रयास किया है। आपने प्रसाद का स्वाद तो लिया है सब लोग, हाँ मैं तो सब डाइट की वजह से खा नहीं पाता, लेकिन मैंने भी थोड़ा मोहित होकर सबका टेस्ट किया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद, हाँ जो भी बना रहे हैं, जो भी आइटम सोच रहे हैं बनाने का, वो भी इतना स्वाद में बना रहे हैं भगवान को अर्पण करके। और बस की व्यवस्था, दिन रात झगड़ रहे हैं वो, हाँ मेहनत कर रहे हैं कि आपका समय पर बस पहुँचे, आपको असुविधा ना हो, ट्रैफिक से निकले, टाइमिंग कैसा, अच्छा टाइमिंग है, सब कुछ है, बेस्ट ऑफ द यात्रा आपको मिले, एकादशी की मंगल आरती, हाँ बिना योजना के अपने आप नहीं होता है वो। हमने यात्रा में प्लान नहीं किया होता और आप बोले अरे मुझे मंगल आरती जाना है, तो सुबह उठकर भी रिक्शा कहाँ मिलेगी, इतनी ठंड में कहाँ रिक्शा आएगी, टाइम पर पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, ये सब हो सकता है। लेकिन यात्रा में जब व्यवस्था हो गई तो सब लोग पहुंच गए उधर, वो भी कैसे, पर्दा खुलने के पहले वहां पर हाजिर थे, वहां पर इतना भाग्य है ना, वो कई सालों के बाद में मिलता है। अभी मैं यहाँ पर रहूंगा 2 दिन के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि कल मैं जा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, फिर मुझे भी ये समस्या ना कि कौन सी गाड़ी करूँ, सुबह कहाँ से जाऊँ, कौन सी गाड़ी टाइम पे आएगी मुझे ले जाएगी, कितना मुझे अकेले को मेहनत करना पड़ेगा कि मेरे परिवार को लेके जाना है सुबह मंगल आरती को। तो यात्रा में कैसा, एकदम आराम से अपने आप जैसे पहुंच गया। अभी कालता जी में सब लोग पिकनिक में जाते हैं, लेकिन हमने जाकर भगवान का कथा का आनंद लिया वहां पर। ये सब भगवान की कृपा है। हाँ, ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ और मैं बहुत महान हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुद को ही अनुभूति है, भाव मन में ऐसा है कि केवल ठाकुर की कृपा से और गुरु जी की कृपा से ही हम बोल सकते हैं, और बोल भी रहे हैं। जो उन्होंने बोला है उसको रिपीट कर रहे हैं, सुन सुन के याद करके लिख लिख के उसको रिपीट कर रहे हैं। और ये भी हमारा भाग्य है कि हमको ये पढ़कर बोलने का भी मौका मिल रहा है। अगर आप लोग नहीं आते, मैं अकेले आते तो मैं कहाँ प्रवचन करता बताइए आप। मेरी पत्नी को लेकर अगर घूमने को आ गए तो मैं बोलूँगा, अरे बैठ जाओ पत्नी, अब मैं 2 घंटा प्रवचन करूँगा, आपको सुनना है। बोले बस करो अभी, आप आगे भी जाना है अपने को, रोज दिन भर सुनती हूँ प्रवचन, आप बस करो, है ना। लेकिन आप लोग हैं, आप लोग आए तो सुबह शाम हर जगह की विस्तार में कथा हो रही है। मदन मोहन जी जाकर वहाँ पर भी कथा हो गई। तो मैंने आपको बताया कि मदन मोहन जी का तो प्रसाद का हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। वृंदावन में जब मैं गया था तो अपने आप हमारे एक मित्र बोले कि आप मदन मोहन जी जा रहे हो, हम आपके प्रसाद की व्यवस्था कर सकते हैं, महाप्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा के। तो यहाँ से रोटी सब्जी पैक करके वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का, 4 बजे आपके हाथ में देने का लंच भी, ये प्लानिंग था। लेकिन वहाँ जाके थोड़ा तीखा था, लेकिन ठाकुर जी का महाप्रसाद आपको मिला। इतना भाग्य में, इतना भाव विभोर हो गया था उस समय कि इतनी भाग्य की बात, ठाकुर जी बुला बुला के कृपा दे रहे हैं। हम लोग तो मांगने की भी योग्य नहीं है शायद, ना मांगने का सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मांगे, लेकिन ठाकुर जी बुला बुला के दे रहे हैं। टाइम पे पहुँचाया ठाकुर जी ने, हमको प्रसाद खिलाया। वो गोस्वामी ने तो अपने घर में अपने घुसने को दिया, उनके घर के आंगन में घुस गए सब लोग, वहीं बैठ के प्रसाद पाया, वहीं बैठ के कथा सुनी, टाइम पे लौट के आए, भगवान के दर्शन किया। कितनी कृपा है देखो आप, कितने भगवान कृपालु हैं। इनका जाते वक्त आप अनंत धन्यवाद करके लौटना, क्योंकि कृतज्ञता की जो भावना होती ना, उससे बढ़िया भावना और कोई नहीं होती। क्योंकि कृतज्ञता के अंदर नम्रता भी है, कृतज्ञ कौन बन सकता है जो नम्र है। अगर वो नम्र नहीं, गर्विष्ठ बोलेगा क्या बड़ा बात हुआ, पैसा तो लिया ना आपने, इतना बड़ा व्यवस्था किया तो क्या बड़ी बात है, पैसा आपने दिया ना आपको, उसमें क्या है, ऐसा बोल सकते हैं अगर उसको गर्व है। लेकिन कृतज्ञता की भावना उसी को आ सकती है जो हृदय से नम्र है। कभी कभी क्या होता है, अभी देखो अमेरिका में जो स्टॉर्म आया है ना, 30-30 डिग्री का स्टॉर्म आया है, तो वहां पर आपके पास बहुत सारे डॉलर होंगे, आप बहुत धनवान करोड़पति अरबोंपति होंगे, लेकिन आपको अरबों खर्च करके भी आज के दिन में लकड़ी नहीं मिल सकती है, आउट ऑफ स्टॉक, फल नहीं मिल सकते हैं, खाने पीने का सामान घर पे रखा है वही आप खा सकते हो, खत्म हो गया तो भूखे मरना है आपको। अरबों रुपए हैं, आप बिजली को 4 गुना दाम से भी खरीद सकते हैं, लेकिन बिजली है ही नहीं खरीदने के लिए। 24,000 घरों में बिजली कट हो गई है, तो आपके पास इतना धन होने पर भी आपको बिजली नहीं मिल सकती है। तो ये मत समझना कि हम लोग पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। पैसा देने के बाद भी आपको बहुत सारे पैसे हैं, आप मर्सिडीज गाड़ी टैक्सी के रूप में ले सकते हो, लेकिन अगर आपको 4 बजे नहीं मिल रही हो तो आप मंगला नहीं पहुंच सकते हो। तो आपकी कैपेसिटी होने से क्या होता है, कृपा होनी चाहिए भगवान की, तभी हो सकता है, तभी आपके पैसे से भी आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसलिए कृतज्ञता होनी चाहिए आदमी को, कितना भी धन खर्च कर दिया होगा हमने, लेकिन जो सुविधा प्राप्त हुई है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। हम इतने महान नहीं है कि हम सब कुछ अपनी योग्यता पर खरीदते हैं, ऐसा नहीं होता है, भगवान कृपा से देते हैं। इसलिए कृतज्ञता ऐसा एक गुण है जो अगर आपके अंदर है तो भगवान आपके सारे दुर्गुणों पर दुर्लक्ष कर देते हैं, और एक कृतज्ञता को देखकर वो दामोदर जी कैसे ना उसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा के फिर वो स्वीकार करते हैं। और जो कृतज्ञ रहता है ना वो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। कृतज्ञता ऐसा एक गुण है जो भगवान की कृपा को खींच लेता है, भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लेता है। भगवान एक बड़ी भीड़ में भी उसको देखते हैं जो कृतज्ञ है। गोविंद जी के पास हजारों भक्त आते हैं, लेकिन जो कृतज्ञता से उनको धन्यवाद करता है, थैंक यू माय लॉर्ड, आप इतने दयालु हो, रोज सुबह दर्शन देते हो, हमको भी यहाँ पर आने का मौका देते हो, जैसे साइकिल से हो, चल के हो, स्कूटर से हो, हमको आने को मौका दे रहे हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रखा है अपने कि हम पहुंच गए उधर, उसी दिन बुखार आ गया, दिन तो क्या करेंगे, तो ऐसे भाव से जो कृतज्ञ रहेगा ना, थैंक यू के भाव में रहेगा, उसको भगवान पूरी यात्रा में सफल कर देंगे, अपनी कृपा से माला माल कर देंगे। इसलिए आप लोग सब लोग धन्यवाद दीजिए भगवान को। और अगर आप विशेष भाव से धन्यवाद दे चुके हैं, समझो सफल हो गए आपके, आपने कृतज्ञता इकट्ठा किया और उसको कैसे भी करके भगवान के चरणों में अर्पण किया था, दिल से भाव से अर्पण किया कि थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, तो उसका अगला एक स्टेप भी है कि अगर आपने भगवान का धन्यवाद दिया और आगे जाकर अपनी भक्ति में वृद्धि नहीं की, जब जो नहीं कर रहे उन्होंने शुरुआत नहीं की, या जब जो कर रहे हैं उन्होंने जप में और दिल नहीं लगाया, और जो सेवा कर रहे हैं उन्होंने और सेवा में दिल नहीं लगाया, तो फिर वो धन्यवाद भी एक तरह से मराठी बोलते हैं ना फुसका बन जाता है, मतलब खोखला बन जाता है, इट बिकम्स यूजलेस। हाँ, यहाँ पर सुना था धन्यवाद करके चले गए मुंबई के, मुंबई गेल्यानंतर रे मजा मांग लिया, वापस जाके अभी तुरंत पहले पहुंचते हैं टीवी ऑन करना है, देखना टीवी में क्या चल रहा है, कितना दिन से सीरियल पता नहीं, चार दिन में क्या हो गया, शादी हुई कि बच्चा हुआ कि नहीं हुआ कि डिवोर्स हुआ, क्या मालूम वो कितना एंग्जाइटी है। तो मतलब हाथी गया नदी के अंदर स्नान किया उसने, और फिर जाके वो मट्टी में लोटपोट हो गया, तो स्नान का क्या मतलब हुआ, कुछ भी नहीं मतलब हुआ। तो यात्रा का परिणाम जो है आपके जीवन में दिखना चाहिए, वही झगड़ा प्रवृत्ति, वही चिल्लाना, वही मारामारी करना, वही ट्रेन में झगड़ना, तो यात्रा में जाके क्या हासिल किया हमने? तो हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन पद्धति में, हमारे व्यवहार में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे साधना में परिवर्तन आना चाहिए। बहुत गुस्सा कर रहे हैं हम लोग, बहुत तड़पते, बहुत क्या क्या करते, झगड़ा करते रहते हैं, वो कम होना चाहिए, भगवान के नाम में और दिल लगना चाहिए। सुबह 7 बजे उठकर जब करते तो 6 बजे उठकर करना चाहिए, अगर 6 बजे करते तो 5 बजे उठकर करना चाहिए, अगर 5 बजे उठ के करते तो मंगला में जाके फिर करने का प्रगति होना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखना चाहिए कि आपने इतना सब टाइम खर्च किया सुनने के लिए, तो जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जितना उत्साह से हम शॉपिंग में गए उतना उत्साह से हम मंगला में जाएंगे ना, शॉपिंग में जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वही उत्साह अगर हमने बाद में मंगला में दिखाया तो भगवान भी कुछ बोल सकते, जो कोई बात नहीं आपने कुछ स्कर्ट ब्लाउज कुछ खरीदा जाके बांधने वाला, लेकिन मेरे पास भी आए सुबह दर्शन करने के लिए, मैं तो कुछ बांधने की साड़ी बेचने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मंगला में आए, है ना, ऐसा भगवान देख के आनंद होता है ना आपका, गिरधारी जी की, गिरधारी गोपीनाथ जी आपको देख के धन्यवाद भाव में आएंगे, भाई थैंक यू जयपुर में आपको मैंने दर्शन कराया सब मेरा, तो आया आप मंगला आरती में, धन्यवाद कथा में आए, फेस्टिवल में आए, पहले सेवा में आते नहीं थे, अभी सेवा में आने लगे मंदिर में, तो ही पूर्व यात्रा का जो है ना वो आपको पूरा लाभ होगा। देखिए कैसे है ना यात्रा ना, ये शरीर से करने वाली एक्टिविटी नहीं है, यात्रा ये आत्मा के सर पर करने वाली एक्टिविटी है, सब कुछ आत्मा के सर पर चलता है, इसमें समर्पण भी है, शरणागति आपने आश्रय स्वीकार किया है, कुछ श्रवण भी किया है, कान से किया है लेकिन जा रहा है आत्मा में, प्रसाद मुंह से खाया है लेकिन उसका लाभ आत्मा से हो रहा है, तो ये आप समझने का प्रयास करो, यात्रा एक आत्मा का प्रवास होता है। और अभी एंड में आपको हमने क्या किया है, लड्डू जो दिए ना वो राधा गोविंद जी, गोपीनाथ जी, दामोदर जी और विनोदी लाल, इनको अर्पण करके आपको महाप्रसाद दिया है, उसके लिए भी मैंने मेहनत किया है, इतने सारे मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने जाकर वहां पर आकर भोग लगाकर फिर सबको आपको बांटा है, ताकि एक तिनका भी क्यों ना हो आपके परिवार के लोगों को, आगे किसी को, मित्रों को मिले, ये बड़ी असीम कृपा है। अरे ब्रह्मा जी को भी देवताओं को भी ब्रह्मा जी को भी भगवान का महाप्रसाद डायरेक्टली प्राप्त नहीं होता है, हम लोग तो एकदम होलसेल में खा रहे हैं यहाँ पर भगवान का प्रसाद, तो वैसे ही कृपा जो है ना उसकी जानकारी होना, उसके लिए सतर्क होना, अवेयर होना कि ये साधारण वस्तु नहीं है, ये दिव्य वस्तु है जो प्राप्त हो रही है, दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो रही है, तभी जाकर ऐसा भाव आने पर भी कृतज्ञता निर्माण होती है, अपने आप निर्माण नहीं होती है। एनीवेज तो आप सब लोगों का धन्यवाद है, आपने मुझे भी सेवा का मौका दिया और मैं भी आपकी वजह से बड़े चिंतन में रहा, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या नोट्स बनाना है, तो ये जो कहते ना इंटेंस, वो बम्बई में भी पढ़ता हूँ मैं, लेकिन जब यात्रा की तैयारी होती है ना तो बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करती है, होती है, कई पुस्तकों को यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके उसका नोट्स बनाना पड़ता है, कई लेक्चर्स यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके मोबाइल में डाउनलोड करके सुनते रहते हैं, जाते आते टैक्सी में, ट्रेन में, फ्लाइट में, सब जगह पर वही सुनते रहते हैं, उसका ही चिंतन चलता है। तो आपकी तो यात्रा 4 दिन की है, मेरी यात्रा कई दिन से चल रही है मन के स्तर पर, तो आपकी वजह से हुई ना वो। आप अगर नहीं यात्रा की भाग लेते तो मैं अपना अपना काम करता, भक्ति विधान में इधर उधर ड्यूटी मेरी लगती रहती उसका चिंतन करते रहता, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे इतने दिनों से तीव्र रूप में जयपुर के लीलाओं का चिंतन, स्मरण, श्रवण करने का मौका मिला, तो इसलिए मैं आपका भी बहुत ऋणी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे थोड़ा सा ये भजन गाएंगे लास्ट में, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, श्रील सनातन प्राण धन हे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, श्रील रूप गोस्वामीर प्राण धन हे, गोस्वामीर प्राण धन हे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, श्रील मधु पंडित प्राण धन हे, जय राधा विनोद राधे, लोकनाथ प्राण धन हे, श्रील लोकनाथ प्राण धन हे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, श्रील जीव गोस्वामीर प्राण धन हे, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, श्रील कृष्ण दास प्राण धन हे, कृष्ण दास प्राण धन हे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, श्रील प्रभुपाद प्राण धन हे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा राधा मदन मोहन भगवान की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री राधा विनोद की, श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, ताई गौर प्रेमानंदे। एक बात आपको बताना जरूरी है कि हमारे अभिराम प्रभु जो हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े अफसर के रूप में काम करते हैं, तो हमारी यात्रा में वो फ्री में सेवा दे रहे हैं, अपनी छुट्टी निकाल कर वहाँ से आकर सेवा दे रहे हैं। कई महीनों से यात्रा की तैयारी में हमारे ऑफिस में आकर डिस्कशन करके प्लानिंग किया है, और उन्होंने और भावग्रही बाबू ने यहाँ पर विजिट भी दिया था अब मई के महीने में, अप्रैल महीने में शायद, और 3 दिन आके पूरा जयपुर छान मार के 15-20 होटल को देख के ये तय किया था ताकि आपको सबसे अच्छी सुविधा खाने पीने की, लेक्चर की, रहने की हो जाए। भावग्रही प्रभु भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और देश विदेश में उनका बिजनेस है, वो कभी शारजा में कभी अमेरिका में उनकी बिल्डिंग्स बनते रहते हैं, वहाँ पर वो जाते रहते हैं, और उनका भी बहुत व्यस्त रहता है कार्यक्रम, बहुत बिजी रहते हैं, तो भी कई महीने से यात्रा की कमेटी में अपना योगदान दे रहे हैं, यहाँ पर भी अपना कीमती समय फ्री में दे रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था ऐसे आम आदमी बन के भी, यात्री बनकर भी आ सकते हो, कोई व्यवस्था करेगा और मैं बैठूँगा, लेकिन अपना परिवार पीछे छोड़ के अकेले कितने लेक्चर मिस किए उन्होंने, आपकी व्यवस्था में बैठे हुए हैं, तो हम सबके बहुत ऋणी हैं, वो धन्यवाद हैं, क्योंकि सबसे अधिक यात्रा का लाभ जो है ना वो यात्रियों का नहीं होता है, वो यात्रा की व्यवस्था करने वाले को होता है, क्योंकि दास दास अनुदास जो बनता है तो सबके सबका दास बनता है, उसको भगवान सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं, तो वो लोग ने शायद कुछ मिस भी किया होगा, लेकिन सबसे अधिक कृपा जो है ना भगवान की वो उनको प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग आपको भी थोड़ा थोड़ा सेवा देते हैं कि आप इसमें लग जाओ, उसको उठाओ, उसको ले लो, प्रसाद सर्विस में आ जाओ, क्योंकि यात्रा में सेवा करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, श्रवण से होता है, कीर्तन से होता है, दर्शन से होता है, कथा सुनने से भी होता है, लेकिन साथ में सेवा करने से वो लाभ और दुगना हो जाता है। तो अभी आगे का कार्यक्रम जो है वो इस प्रकार से है।